भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया, भारत की भूमि पर।
ओम शांति। सभी उच्चारण करें ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो, प्रभु प्रिय भी आत्माएं हो, तो शांति प्रिय प्रभु प्रिय आत्माएं जो होती है उनके अंदर प्रभु के प्रति बहुत लगन होती है, और मैं समझती हूँ उसी लगन को लेकर आप सभी यहाँ आए हैं इस राजयोग शिविर में, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे राजयोग के द्वारा हम परमात्मा से ईश्वरीय वरदान प्राप्त कर सकते हैं और ये जन्म तो सफल बना ही सकते हैं, लेकिन जन्म जन्म भी सफल बना सकते हैं। जैसे हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने किया, मेरा भी ये सौभाग्य था कि मैं बचपन से ही इस संस्था से जुड़ी और पिता श्री ब्रह्मा बाबा का को देखने का भी मेरा सौभाग्य था। केवल 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हमने ब्रह्मा बाबा का दर्शन किया। वह भव्य व्यक्तित्व जिसने शिव परमात्मा को आकर्षित किया और शिव परमात्मा ने उनको अपना माध्यम बनाया, अपना परिचय उनके द्वारा दिया, और यह ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा जन जन तक पहुंचाने के लिए आदेश दिया। तो उस महान हस्ती की गाथा आपको हम सुनाने जा रहे हैं। कई लोग समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ अपने गुरु को भगवान मानती होगी, क्योंकि अन्य संस्थाओं में गुरु की प्रथा है और गुरु की गद्दी होती है, एक गुरु के देह त्याग के बाद दूसरा गुरु स्थान पर बैठता है और ऐसी परंपरा चलती है, और जो लोग आते हैं उस संस्था में या आश्रम में वो उस गुरु के शिष्य कहलाते हैं, उनको उस गुरु से मंत्र मिलता है, शिक्षा मिलती है, दीक्षा मिलती है। तो इस दुनिया में तो ये बहुत कुछ चलता है हम जानते हैं, लेकिन यह संस्था सबसे निराली है। आपने सबसे पहले तो यही देखा होगा कि हम सबको मना करते हैं पांव मत छुएं, क्योंकि पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने पांव छूने नहीं दिए। बाबा कहते थे मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, भगवान तो किसी देहधारी को हम कहते भी नहीं हैं, लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा को गुरु भी नहीं कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को हम अलौकिक पिता कहते हैं, जिस अलौकिक पिता के द्वारा उस पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव ने हमें यह अलौकिक नया जन्म दिया, एक नया लक्ष्य दिया, जीवन को पलटाने की एक अद्भुत शक्ति दी, जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन से हमने प्रेरणा ली कि उनका जीवन कैसे बदल गया, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कैसे परमात्मा ने उनको यह आदेश दिया कि अब तुमको एक नई दुनिया की स्थापना करनी है, इसलिए उठो और जागो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था, जो लखीराज बाबू के नाम से हैदराबाद सिंध में प्रख्यात थे, उनको समाज में सब आदर करते थे क्योंकि बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे, सम्माननीय व्यक्ति थे, समाज में बहुत बड़ा व्यापार था उनका, हीरे और जवाहरातों का व्यापार करते थे, राजाओं महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना था, अंग्रेजों के साथ भी उनका बहुत संबंध था क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजों का राज्य था, और बाबा नेपाल भी अक्सर जाया करते थे क्योंकि नेपाल का राणा परिवार भी बाबा से हीरे जवाहरात खरीदते थे। बाबा की दुकान कलकत्ता में थी जहां उनके पार्टनर रहते थे और खुद बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे, सिंधी जात के थे, परंतु बाबा बड़े उदार दिल, सबको गले लगाते थे, और जितने ही बाबा धनी थे उतने ही बाबा दानी थे, उतने ही बाबा भक्त थे। तो बिजनेस भी बहुत बड़ी थी उनकी, इसलिए बाबा बड़े दिल से दान पुण्य भी करते थे, परिवार भी बड़ा सुखी था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे, और बड़ा सुखी जीवन व्यतीत हो रहा था, पतिव्रता स्त्री थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस बात की कमी थी उसकी तलाश में थे, और वह था सत्य ज्ञान, हम कौन हैं, ईश्वर कौन है, हम क्यों इस संसार में आए, जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है, कहाँ हमें जाना है, परमात्मा से कैसे मिलना है, मन को कैसे एकाग्र करना है, ये सारे प्रश्न मन में उभरते थे, और अक्सर बाबा इनके उत्तर शास्त्रों से ढूंढते थे, गुरुओं से पाना चाहते थे। इसलिए बाबा ने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। कोई सोचे 12 गुरु क्यों किए, एक ही गुरु पर्याप्त होता है, लेकिन 12 गुरु क्यों किए, क्योंकि सत्यता की खोज जारी थी और कहीं से भी उनको संतुष्टता नहीं हुई। गीता के पाठी थे, बिना गीता का पाठ किए बाबा मुंह भी जूठा नहीं करते थे, यहाँ तक कि चाहे वो यात्रा पर हो, ट्रेन में हो, सवेरे सवेरे नहा धो के गीता का पाठ नित्य करते थे। तो इतनी उनकी अटूट भक्ति थी, जिसमें विष्णु उनके इष्ट थे, विष्णु की भक्ति करते थे और कोई ऐसा विष्णु का मंदिर नहीं था जिसका दर्शन बाबा ने न किया हो। हालांकि भक्ति में तो सब मंदिरों में जाते हैं, तो बाबा सब तीर्थों पर जाते थे, हर साल जाते थे। अमरनाथ की यात्रा भी बाबा ने की अपने जीवन काल में, लेकिन उस सत्य की खोज जारी रही। तो कैसे परमात्मा को वो सदा यही कहते थे, हे ईश्वर मुझे सत्य की पहचान दो। हमारे प्रश्नों का उत्तर मिले हमें। इसीलिए भक्ति बहुत थी, भावना भी बहुत थी, लेकिन क्योंकि विवेकवान भी थे, बुद्धिवान भी थे, इसलिए उनका उत्तर जो प्रश्न थे वो विवेक के आधार पर चाहते थे, केवल भावना के आधार पर नहीं। और भगवान जो इष्ट उनके विष्णु थे, उनके दर्शन के भी प्यासी थे, जैसे हर भक्त अपने इष्ट का दर्शन करना चाहता है। तो कैसे उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया, जो एक दिन की कहानी, एक दिन की बात है कि बाबा को अचानक विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। विष्णु उनके सामने उपस्थित हो गए और एक ऐसा महान वरदान दिया उन्हें, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ तुम भी मेरे समान हो। ये वरदान विष्णु के कई रूप उनके सामने आकर देते गए, एक ही वरदान, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, चार भुजाधारी विष्णु के अलग अलग रूप, श्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, कई विष्णु के रूप हैं, और वे सब रूप एक एक करके उनके सामने आते गए और एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी वैसे ही हो, मेरे हमारे समान। तो बाबा के मन में उसके बाद प्रश्न उठा कि मैं कैसे विष्णु समान हो सकता हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, आखिर मुझसे भगवान क्या कराना चाहते हैं जो इतना बड़ा वरदान हमें दिया। और इसी को समझने के लिए बाबा गुरुओं के पास भी जाते थे कि भगवान ने ये मुझे वरदान कैसे दिया, मैं तो विष्णु का भक्त हूँ। तो हर गुरु से उसे यही ज्ञान मिलता था कि भगवान आपसे कुछ महान कार्य कराना चाहते हैं, इसीलिए शायद आपको ऐसा वरदान दिया। तो उसके मन में आया कि भगवान मुझसे क्या कार्य कराना चाहते हैं, मैं तो जो अपनी यथा शक्ति अनुसार दान पुण्य करता हूँ, समाज में सेवा करता हूँ, ईमानदारी से धंधा करता हूँ, परिवार में सुख संपत्ति सब कुछ है, किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, तो भगवान का क्या आदेश है मेरे लिए जो वो मुझसे कराना चाहते हैं। और इसी खोज में बाबा बनारस गए। हैदराबाद सिंध में बाबा रहते थे, कलकत्ता में उनका दुकान था और मुंबई में भी बहुत रहते थे, वहाँ भी उनका घर था। तो बाबा इस सत्यता की खोज के लिए कुछ समय घर से, दुकान से, अपने परिवार से छुट्टी लेकर बनारस चले गए, ये जानने के लिए कि भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं। और वहाँ एकांतवास में रहने लगे, उनके मित्र की एक कोठी थी, उस कोठी में रहकर विष्णु का ध्यान करते थे, गंगा घाट पर जाकर भी ध्यान करते थे, संतों का संग करते थे। अब एक दर्शन तो उन्हें हुए जिससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ी। अब बनारस में जब बाबा थे तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसे साक्षात्कार हुए जो बिल्कुल भयंकर डरावने साक्षात्कार जिसमें हुए, जिसमें बाबा ने इस संसार के विनाश का दृश्य देखा। बाबा ने देखा कैसे अणु युद्ध के द्वारा विनाश हो रहा है, चारों ओर अणु बम गिर रहे हैं और आग ही आग फैली हुई है दुनिया में। फिर दूसरी ओर बाबा ने ग्रह युद्ध द्वारा विनाश देखा, लोग आपस में लड़ झगड़ करके एक दो का खून करके खत्म हो रहे हैं। तीसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश देखा, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल आदि आदि, ये जो भी प्रकृति के द्वारा आपदाएं होती है वो सब आपदाएं प्रकृति एक एक नृत्य करती हुई, विनाश का तांडव दिखाती हुई सबको नाश कर गई। ऐसे बाबा ने विचित्र साक्षात्कार किए। तो बाबा को लगा कि ये साक्षात्कार जो मैं कर रहा हूं, अगर इस प्रकार दुनिया का विनाश हो जाएगा तो फिर ये दुनिया जो भगवान की दुनिया है वो तो सारी खत्म हो जाएगी। फिर हे भगवान, आप मुझे ये दिखाकर क्या कहना चाहते हो, क्या मेरे लिए आदेश है जो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं? पर एक बात जरूर थी कि बाबा के अंदर में बहुत वैराग्य आ गया, संसार से वैराग्य आ गया कि ये दुनिया तो बहुत जल्द ऐसे नष्ट हो जाने वाली है, तो ये धन संपत्ति, ये सब मोह माया, ये सब किस काम का? तो उस वैराग्य के कारण सत्यता को जानने की और भी तीव्रता होती गई। तो परमात्मा से वो बातें करता था, हे भगवान मुझे हुक्म दो, हुक्म करो कि मैं क्या आपकी सेवा करूं, किस प्रकार करूं। तो कैसे बनारस में ही बाबा को एक दिन एक ऐसी सुंदर दुनिया, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ, परमधाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा कि परमधाम से आत्माएं धीरे धीरे सितारों माफिक नीचे उतर करके धरती पर पहुंचते ही देवता का रूप धारण कर रहे हैं। और देखते ही देखते बाबा ने देखा ये सारी धरती इतनी सुंदर बन गई, इतनी महान बन गई, इतनी श्रेष्ठ बन गई, चारों ओर हरियाली छा गई, इतने सारे सुंदर सुंदर हीरे जवाहरातों से सजे हुए सोने के महल चारों ओर तैयार हो गए, प्रकृति का चरम सुखदायी स्वरूप बाबा ने देखा, देवताएं रास कर रहे हैं, बड़ा ही आनंदमय संसार देखा। कितना बड़ा अंतर पाया जो पहले उन्होंने देखा महाविनाश, और फिर उसके बाद एक सुंदर सतयुगी दुनिया। और एक आवाज बाबा ने सुनी जिसके शब्द थे, उठो जागो लखीराज बाबू, उठो जागो, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। अब उठो जागो, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, ये तो सुन लिया बाबा ने, लेकिन कैसे बनानी है ये तो नहीं बताया। तो बाबा के मन में और प्रश्न उत्पन्न हुए कि ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, उसके लिए भगवान मुझे क्या करना होगा ये भी तो बताओ, कैसे बनाऊंगा मैं ऐसी दुनिया। अब उसके बाद जब बाबा हीरों को देखते थे तो बाबा को इतना वैराग्य आता रहा, ये हीरे तो बाबा को पत्थर दिखाई दिए, हीरों की चमक तो बाबा को कोई आकर्षित न करे, अब पत्थरों से क्या धंधा करेंगे बाबा, पत्थरों का धंधा क्या करेंगे। तो बाबा को लगा कि सबसे पहले तो मैं जो मेरा व्यापार है उसको मैं खत्म करूं, क्योंकि बहुत फैला हुआ व्यापार था। तो हैदराबाद सिंध में रहते थे, बनारस में बाबा साक्षात्कार किए, फिर वहाँ से बाबा कलकत्ता गए जहाँ उनके पार्टनर रहते थे, और अपने पार्टनर को सब बातें बता दी। उसी वक्त उनके घर से हैदराबाद सिंध से एक तार आई, क्योंकि घर में पोतरा पैदा हुआ था, बहुत खुशियाँ मना रहे थे सभी और बाबा का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि परिवार का प्रमुख तो बाबा थे, बच्चों की तो शादी हो चुकी थी, अब पोतरे पैदा हो गए थे, तो पोतरे का नामकरण करने लिए बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। तो बाबा को बुला रहे थे और यहाँ बाबा बिल्कुल वैराग्य वृत्ति में थे, दुनिया से दूर, बस हीरो का व्यापार खत्म कर रहे थे। तो पार्टनर को ये सब बातें बता दी कि वापस घर जाने से पहले ये सब सौदा जो कुछ भी धंधा है ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अब पार्टनर इतना जल्दी छुट्टी कैसे दे, क्योंकि बाबा तो बहुत ट्रैवलिंग करते थे, राजाओं महाराजाओं के पास जाते थे, वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि तो राजा ही थे, वो कैसे आएंगे दुकान में। तो बाबा ही ले जाते थे सब हीरे जवाहरात के जेवर, रानियों के पास भी उनको ही जाना पड़ता था, वो भी कोई ऐसे थोड़ी आएंगे, वो तो घूंघट में रहती थी। लेकिन राजाएं महाराजाएं बाबा को देखकर कहते थे कि भगवान ने एक बड़ी भूल कर दी है, आपके अंदर जो रॉयल्टी है, जो श्रेष्ठ संस्कार है, वो हमारे में भी नहीं है जो राजाओं में होने चाहिए, तो शायद भगवान ने भूल की और राजा हमें बनाया आपको नहीं। तो बाबा कहते थे ये भगवान की भूल नहीं है। वैसे ड्रामा के अंदर एक बहुत बड़ा रास था कि स्वयं भगवान ने उनको तो विश्व का महाराजन सतयुग में बनाया था, पर कलयुग के अंत में तो वो साधारण रूप में थे, पर वो क्वालिफिकेशंस, वो गुण, वो व्यक्तित्व उतना ही महान था बाबा का। तो अब बाबा को तो सब धंधा वाइंड अप करना ही था, तो पार्टनर को सब बता दिया। पार्टनर ने बहुत ही जबरदस्ती, जैसे बिना इच्छा के सब हिसाब किताब पूरा करना पड़ा उसे, तो दुकान तो उसके हाथ में दे दिया, दुकान पार्टनर को, बाकी उनका जो हिस्सा था वो लिया, ताकि वापस हैदराबाद सिंध जाकर जो भगवान का मुझे आदेश मिला है उस अनुसार मैं कार्य करूं। तो तार घर से आई थी कि जल्दी आ जाओ, तो तार का उत्तर तार में दिया, पर उस समय बाबा को ऐसा नशा चढ़ा हुआ था जिसके कारण तार में जो उत्तर दिया वो भी नशे वाला उत्तर दिया। वो शब्द क्या थे, अलफ को अल्लाह मिला। उस समय हैदराबाद सिंध में अलफ बे उर्दू भाषा चलती थी, जैसे हम लोग ए बी सी पढ़ते हैं ना, क ख ग ग, तो अलफ बे ये भाषा उर्दू की चलती थी। तो अलफ को अल्लाह मिला, ब बे को मिली झूठी बादशाही, यानी पार्टनर उनका बे और खुद अलफ, अलफ बे ए बी है। बे को मिली झूठी बादशाही, दुकान उसको दे दिया। आई तार अलफ को, आपकी तार हमें मिली और हुआ रेल का राही, यानी ट्रेन में मैं कलकत्ता से हैदराबाद सिंध आ रहा हूँ। तब तो हैदराबाद सिंध भी भारत का हिस्सा था, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले की बात है, 1936 की बात है, आज से 73 साल पहले। तो जब घर वालों ने तार सुनी पढ़ी, उनको समझ में नहीं आई अलफ क्या बे क्या, लेकिन अंतिम वाक्य अवश्य समझ में आया, हुआ रेल का राही, मैं ट्रेन से वापस लौट रहा हूँ। लेकिन जब बाबा वापस हैदराबाद सिंध लौटे, अपना धंधा सब वाइंड अप करके बंद करके पूरा करके, तो बाबा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। नहीं तो बाबा का क्या ठाट था राजाओं के साथ अंग्रेजों के साथ उठना बैठना, लेकिन बाबा का खान पान बड़ा ही शुद्ध था, भले पैरवाइश उसी ठाट वाली थी लेकिन खान पान बड़ा ही शुद्ध था। कभी मांसाहार या कोई अशुद्ध भोजन बाबा ने कभी सेवन नहीं किया। विष्णु पंत के वल्भाचारी कट्टर वैष्णव बाबा थे। तो जब बाबा वापस लौटे तो परिवर्तन इतना महान हो गया कि बाबा के वस्त्र भी बदल गए, धोती कुर्ता साधारण ड्रेस बस, और बिल्कुल एकांत में रहने लगे। अब एकांत इतना उसको अच्छा लगने लगा कि ज़्यादा बातचीत नहीं, कुछ और गोरख धंधों में जाना नहीं। तो परिवार वाले सोचे भगवान का क्या आदेश इनको मिल रहा है, कैसे समझ में आए, क्योंकि बाबा इतना बोलते भी नहीं थे, शांत शांत रहने लगे। अंदर ही अंदर उनको बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होती थी। अब और परिवर्तन कैसे आया जीवन में, जिसके कारण उनके परिवार में भी एक परिवर्तन जबरदस्त आ गया, कि बाबा एक दिन अपने कमरे में बैठे थे तो जैसे परिवार वाले अंदर गए तो देखा चारों ओर लाइट ही लाइट, एकदम जैसे कोई प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा के चारों ओर इतना प्रकाश था, उनके चेहरे पर उनके ललाट पर वो ऐसी चमक थी जो परिवार वालों ने भी समझा ये क्या अनुभव बाबा कर रहे, और आंखें बंद और चारों ओर लाइट ही लाइट, जैसे घूम रही हो उनके चारों तरफ और आंखें बंद। और जैसे बाबा के नजदीक गए तो एक आवाज बाबा के मुख से निकलती हुई उन्होंने सुनी, बड़ी गहरी आवाज थी, कोई आकाशवाणी जैसे, पर उनके मुख से निकल रही थी। और वो शब्द क्या थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। लगातार ये शब्द निकलते गए, यानी शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, शिव परमात्मा ने अपना परिचय उनके मुखारविंद से दिया। अब आंखें बंद थी और ये मुख से आवाज निकल रही थी, परिवार वाले सुनते रहे, देखते रहे, आश्चर्य खाते रहे, ये क्या बोल रहे हैं, समझ में तो कुछ आया नहीं, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। अब सुनते रहे जब तक बाबा वापस आंखें खोले। तो जब बाबा ने आंखें खोली तो बाबा से पूछा, सब ने पत्नी बच्चे बेटे बहू सब थे, कि बाबा आपने क्या अनुभव किया। बाबा की आयु तो काफी हो चुकी थी, 60 वर्ष की लगभग होने जा रही थी आयु उनकी। तो बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, बहुत तेजोमय, बहुत बड़ महान शक्ति, और वो तेज, वो प्रकाश, वो शक्ति मेरे निकट आई, और निकट आते 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 मेरे अंदर समा गई। अब वो शक्ति मुझसे कोई महान कार्य कराएगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, पर मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। और उनके चेहरे पर, आंखों में जो जैसे बल्ब जल रहे थे, ऐसा अनुभव उनके घर वालों ने बाबा के चेहरे से किया, लाइट ही लाइट। बस फिर तो और परिवर्तन उनके परिवार वालों में भी आ गया कि ये तो भगवान ही उनको शक्ति दे रहे हैं, ये इंसान की ताकत नहीं है। अब उसके बाद चमत्कार होने लगे, क्योंकि परमात्मा ने अपना कार्य शुरू किया। और चमत्कार क्या होने लगे कि जो साक्षात्कार बाबा ने किए, जैसे परमधाम का, सतयुग का, विनाश का, श्री कृष्ण का, और विष्णु का, वो साक्षात्कार दूसरे करने लगे बाबा से। बाबा की उन पर दृष्टि पड़ी और वो सब ध्यान में चले जाते थे, और विनाश का साक्षात्कार करते थे, सतयुग का आदि आदि। या जिसकी जिसकी दृष्टि बाबा पर पड़ी और बाबा को खड़ा हुआ देखा, तो एकदम वो महसूस करते थे जैसे बाबा सफेद वस्त्रधारी धोती कुर्ता वाला गायब हो गया और उसकी जगह श्री कृष्ण खड़े हैं, ऐसे लोग अनुभव करने लगे। यहाँ तक कि लोगों को घर बैठे भी ऐसे अनुभव होने लगे, श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, वो बदल करके ब्रह्मा बाबा बाबा हो गए, और फिर वो बदल कर फिर श्री कृष्ण हो गए, और जैसे श्री कृष्ण के नजदीक जाते हैं वो बदल करके साधारण रूप हो जाते हैं, फिर श्री कृष्ण को ढूंढते हैं तो दूसरी जगह मिलते हैं, फिर उनसे पूछ उनके पास जाते हैं तो वो बदल जाते हैं, फिर श्री कृष्ण उनको कहते हैं अगर मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, ये साक्षात्कार करते थे। और इसी आकर्षण से कितने भाई बहन हैदराबाद सिंध के बाबा के पास आने लगे। बाबा तो रोज गीता का पाठ करते थे, सत्संग करते थे, घर वाले सब बैठते थे, अब और आने लगे, और बाबा ओम की ध्वनि करते थे, और जिस ओम की ध्वनि जब साथ में मिलकर करते थे तो जो भी सभा में बैठते थे सब ध्यान में चले जाते थे और सबको साक्षात्कार होता था। अब उसमें कई हमारी जो वरिष्ठ दादियां हैं, बड़ी बहनें हैं, वो भी इसी प्रकार से आई अपने परिवार के साथ और अनुभव किया। उसकी तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन एक दो कहानी मैं आपको सुना सकती हूँ। जैसे आप बाबा के साथ देख रहे हैं मम्मा, वो यंग थी, वो 15-16 साल की आई अपनी माँ के साथ। बाबा के साथ उनका कोई लौकिक में रिश्ता नहीं था, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो माँ बहुत उदास थी, दुखी थी। तो बेटी को जब पता चला कि बाबा के पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं, बहुत आत्मा को शांति मिलती है, तो वो अपनी माँ को लेकर आई बाबा के पास। और उसकी माँ ने जैसे बाबा को देखा, बस बाबा को श्री कृष्ण रूप में देखने लगी, और एकदम से उसको चटक पड़ी जैसे मेरा इष्ट मुझे मिल गया। और इतना जो रोती रही क्योंकि पति गुजर गया था, और उस समय हैदराबाद सिंध में सिंधियों में यह एक रस्म थी कि अगर किसका पति गुजर जाए तो वो विधवा विधवा पूरे काले कपड़े पहनकर, बाल खुला और घूंघट निकला हुआ, और एकदम रोते रहना रोते रहना रोते रहना बस, और अपने आप को छाती पीटना, जैसे नहीं दुख में कष्ट में सिर पीटना छाती पीटना, यानी विधवा एक जैसे समाज में अभिशाप, लोग उसको देखना पसंद न करे, ऐसे ऐसी उस समय की प्रथाएं थी। नारी का बड़ा शोषण था, जो पुरुष लोग थे वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका विदेशों में व्यापार चलता था, सिंगापुर हांगकांग जापान लंदन अमेरिका एशिया पश्चिमी दुनिया सब जगह बड़े बड़े व्यापार करते थे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, परंतु उनका घर हैदराबाद सिंध था। कभी कभी अपने घरों में आते थे, तो इसीलिए नारी के प्रति एक तो शोषण था, दूसरा उनका ताड़न था तिरस्कार था, उनको समाज में कोई स्थान नहीं था, घूंघट में ही पूरा टाइम रहना। और जब बाबा के सामने वो आई तो एक नया अनुभव उनको हुआ, एक नई शक्ति उनको मिल गई, तो ये एक अलग अनुभव था। और दादी प्रकाशमणि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही 38 सालों के लिए बाबा के अव्यक्त होने के बाद 69 to 2007, दादी का अनुभव कुछ और था। वो कुमारी थी 14 साल की, उसको घर बैठे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और बाबा उनके सामने आए और कृष्ण कहता अगर मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। पर बाबा को वो जानती नहीं थी, वो तो स्कूल पढ़ती थी, उनके पिताजी जानते थे ज़रूर। पिताजी उनके हैदराबाद सिंध में एक नामी ग्रामी ज्योतिषी थे, जो सबकी जन्म पत्री निकालते थे, ज्योतिष विद्या जानते थे। तो अपनी बेटी की जन्म पत्री में उन्होंने देखा कि ये बेटी तो मेरी मीरा जैसे बनेगी, यानी पवित्र रहेगी, जीवन पवित्र बनाएगी। तो बहुत भावना थी अपनी बेटी में। और दादी प्रकाशमणि, उनका लौकिक में नाम रमा था, वो गीता का पाठ नित्य करती थी, कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। तो जब उनको ये साक्षात्कार हुआ, उनको तो कुछ समझ में नहीं आया ये कौन व्यक्ति है। स्कूल में जब गई तो उस समय काफी नाम प्रसिद्ध हो गया था बाबा का, सत्संग बाबा कराते थे। तो उनकी एक सहेली ने उनको कहा कि देखो तुम कृष्ण की भक्ति करती हो, हमारे वहाँ एक दादा लेखराज है, उनका सत्संग चलता है, जो उनके सामने जाते हैं उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम भी चलो। मैं भी गई हूँ। तो उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। तो पिता को जब सुनाया तो पिता ने कहा बेटी तुम तो ज़रूर जाओ, तुम तो वैसे ही कृष्ण की भक्ति करती हो, और तुम देख कर आओ वहाँ क्या होता है। बुजुर्ग थे पिता उनके, तो कहा तुम देख कर आओ वहाँ क्या अनुभव, सुना है कि जो भी वहाँ जाते उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो जैसे अगले दिन वो गई सत्संग में, तो बाबा ओम की ध्वनि कर रहे थे और वो सत्संग में बैठी, और उसने भी जैसे ओम की ध्वनि की वो एकदम ध्यान में चली गई। साक्षात्कार उसने श्री कृष्ण का किया, बड़ी मगन रही उसमें, बहुत सुंदर अनुभव उसने उस सतयुगी दुनिया का कृष्ण के साथ किया। बस उसको तो ऐसी लगन लग गई कि उसने सोचा बस यही मेरा जीवन है। तो बाबा ने उनको कहा कि अपने पिता से चिट्ठी लिखा कर आओ कि मैं ज्ञान अमृत पीने के लिए नित्य जाऊंगी। तो पिता ने छुट्टी दे दी। लेकिन उस समय बाबा एक स्कूल बनवा रहे थे बच्चों के लिए, जिसमें बाबा को टीचर्स की ज़रूरत थी। तो बाबा ने उनसे पूछा कि आप ऐसे टीचर बनोगी बच्चों की, जिनको गीता का भी ज्ञान दिया जाए, साथ साथ आध्यात्मिक बातें सुनाई जाए और राज विद्या के साथ। तो उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। फिर पिता ने उसको सहज छुट्टी दी कि अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करते, क्योंकि बाबा को था मैं ऐसा स्कूल बनवाऊं जहां जो टीचर पढ़ाने वाली हो वो नौकरी करने के हिसाब से नहीं पढ़ाए, लेकिन अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करे। तो जिन जिन्होंने अपने पिता से ये चिट्ठी लाई कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा हूँ, तो ऐसे बाबा के पास आ गए, वो टीचर बने और बाबा ने स्कूल जो खोला उसमें बच्चे आने लगे और इस हिसाब से कई परिवार के परिवार आए और बाबा को देखते ही बस लगन लग गई और उन्होंने अपना जीवन इसमें समर्पित कर दिया। तो उस समय हैदराबाद सिंध में तीन क्रांतिकारी बातें हुई, एक साक्षात्कारों की क्रांति हुई, लोग कहते थे कि इनको कोई जादू मिला है, जादू करता है, बाबा कहे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये तो ईश्वर की शक्ति काम कर रही है, साक्षात्कार मैं कैसे कराऊंगा, मुझे भी तो उसी परमात्मा ने कराया। और दूसरी क्रांतिकारी बात यह हुई कि माताएं और बहनें वो ज्यादा आने लगी, क्योंकि वो वैसे भी फ्री थी, पुरुष लोग तो विश्व में चक्कर लगाते थे बिजनेस के कारण, इसलिए वो आने लगी, सत्संग करने लगी। और जबकि नारी पर इतना शोषण था तो बाप तो भगवान का आदेश मिला कि अभी बहनों को आगे करो। जब नारी शक्ति आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे आएगी तब ये संसार स्वर्ग बनेगा। नारी आध्यात्मिकता से गिरी तब ये संसार नरक बनाए। नारी वो धुरी है, जिस धुरी को अगर फिर से ऊंचा उठाया जाए वो स्वर्ग बनेगा संसार, और नीचे गिरने से संसार नरक बनाए। तो बाबा ने बहनों को आगे किया। मम्मा जिनका नाम राधे था, जब वो अपनी माँ के साथ आई तो वो स्कूल में बहुत अवार्ड्स लेती थी, बहुत सुंदर, उनके फीचर्स भी अच्छे थे, सुंदर थी, आवाज़ बहुत सुरीला था उनका, सितार बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी, गीत गाती थी। तो बाबा ने देखा कि ये बच्ची बाबा के साथ सहयोग कर सकती है, तो बाबा ओम की ध्वनि करते थे और बाबा ने इनको कहा आप भी मेरे साथ ओम की ध्वनि करो। तो इनकी आवाज़ तो बहुत मीठी थी, तो जैसे ओम की ध्वनि करने लगी तो उनसे श्री राधे लक्ष्मी के साक्षात्कार होने लगे। बिल्कुल सब ने ऐसे महसूस किया, बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार और मम्मा से राधे का, लक्ष्मी का साक्षात्कार। और देखते ही देखते सत्संग इतना बढ़ गया और बहनें माताएं ज्यादा आने लगी। फिर बाबा गीत लिखते थे और मम्मा उनका तर्ज निकाल करके वो भजन गाती थी, तो ओम मंडली के नाम से हैदराबाद सिंध में ये संस्था बन गई और वो प्रसिद्ध हो गई। तो ये क्रांतिकारी बात हुई कि महिलाओं में एक नई जागृति आई, एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा हुई। और तीसरी क्रांतिकारी बात थी जो परमात्मा ने कैसे ये आदेश दिया सबको कि अब तो हम अपना जीवन कृष्ण को अर्पित करते, ज्ञान अमृत पीने पीना और पिलाना यही हमारा उद्देश्य होगा। तो वो जब ये उन्होंने प्रतिज्ञा की अपने जीवन में, अब नेचुरली ज्ञान अमृत पीना है तो विष का प्याला कैसे पिएंगे, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कैसे होंगे, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब जब उनके पति विदेश से वापस लौटे तो हंगामा हो गया, क्योंकि बहनों माताओं ने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम अपना जीवन पवित्र और योगी बनाएंगे, तो पुरुषों ने बहुत कुछ धमाल मचाई। लेकिन बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे भी जो आदेश दिया मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मेरा परिवार भी देखो मेरे साथ है, बाबा का परिवार तो उनके साथ ही था। तो जब देखा कि इस प्रकार का थोड़ा हंगामा हो रहा है, तो बाबा अपने परिवार को लेके हैदराबाद से कराची चले गए। ये भगवान को जो कराना होगा वो कराए, मैं तो अपने परिवार में हूँ, अब ईश्वर का क्या कार्य है, कैसे कराएगा वो जाने। सत्संग सौंप दिया मम्मा के हाथ में, अब आप सत्संग कराओ। तो जब कराची चले गए बाबा, तो सबको पता चल गया बाबा कराची चले गए, तो रातों रात वो सब कराची चले गए। अब बाबा कहे यहाँ कैसे आए, वो कहे हम तो जाएंगे नहीं, हमें तो भगवान मिला है, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। बस फिर तो करीब 385 भाई बहनें बाबा के संग रहे और 14 साल तपस्या की। हम कहते उस समय भट्टी बननी थी, जैसे भट्टी पकती है ना, ईंट पकते हैं भट्टे में, या कपड़े मैले भट्टे में धुलते हैं, मैल निकलती है। तो 14 साल तक ऐसी भट्टी पकाई भगवान ने, और दुनिया की निगाहों से सब दूर रहे। 1937 से 1950 तक, ये 13-14 साल, 37 से 50, जिस समय ये बिल्कुल एकांतवास में कराची में रहने लगे, और इन्हीं 13-14 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन विश्व में आया। एक परिवर्तन विश्व युद्ध के रूप में हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, विश्व युद्ध हुआ जिसमें अनेक देशों ने भाग लिया यूरोप में, और परिणाम स्वरूप, या चाहे ईस्ट में, परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए इस विश्व युद्ध में। और वो युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान पर बम गिराए, एटम बम गिराया, और पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया वो एटम बम गिरने से। तब जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेके, हार स्वीकार की, और युद्ध समाप्त हुआ। हिटलर वो जर्मनी में थे जापान के साथ, और उन्होंने अमेरिका के आगे हार स्वीकार की और युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका जीत गया, लेकिन लाखों लोगों की कुर्बानी लेकर। और फिर तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यूएन बना, जिसमें उन्होंने संकल्प किया कि आगे कोई लड़ाई नहीं होने देंगे, क्योंकि विश्व युद्ध में इतने लोग मारे गए, अणु बम जो गिराए गए उससे भी इस पूरे पूरा शहर नष्ट हो गए। तो ये पता चल गया कि अभी विज्ञान ने वो आविष्कार किया है जो इस दुनिया का नाश कर सकता है। और फिर भारत के अंदर महात्मा गांधी का जोर था उसी समय, अंग्रेजों को ये आदेश दे रहे थे, कह रहे थे भारत छोड़ो भारत छोड़ो, लेकिन अंग्रेज भारत ऐसे ही नहीं छोड़ के गए, भारत के दो टुकड़े करके गए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। और 1947 में ये बंटवारा हुआ और ये संस्था पाकिस्तान में चली गई, क्योंकि कराची में थी, नहीं तो पहले तो भारत का हिस्सा था। अब जब ये कराची में चली गई तो वहाँ पर बहुत सारा दंगे फैल गए चारों तरफ। जो हिंदू थे सबको कहते थे जाओ हिंदुस्तान, या तो मुसलमान बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या तो अनेकों का सिर काटे। बहुत बड़ा युद्ध जैसा सिविल वॉर का रूप हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान में। बंटवारा क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए, परंतु ये संस्था कराची में ही रही। भगवान की छत्र छाया में जो एक बाल भी बांका नहीं हुआ, और बहनें अधिक थी तो अवश्य सरकार ने भी सहयोग दिया, चारों ओर पहरा रख दिया ताकि कोई आतंक फैलाने वाले अंदर न घुसे। और फिर जब पूरा पूरे दो देश बंट गए, अलग हो गए, गणतंत्र भी हो गया 26 जनवरी 1950 को, सब शांति हो गई, संविधान बन गए, मानो अलग हो गए दोनों देश। उसके बाद भगवान का आदेश मिला कि अब भारत में जाओ, क्योंकि ये भगवान भविष्य जानते थे। भारत के एक भगवान का जन्म स्थान है, भारत स्वर्ग भूमि है, भारत में देवी देवताओं का राज्य है, भारत ही फिर से सतयुग बनना है, भारत ही फिर से सोने की चिड़िया कहलाना है, भारत में ही फिर से दूध और घी की नदियां बहनी है, भारत ही विश्व के लिए आध्यात्मिक गुरु बनना है या है, ये बाबा जानते थे, भगवान जानते थे। तो इसीलिए भगवान का ये आदेश था, 14 साल वहां तपस्या की कराची में, लेकिन आदेश मिला कि भी भारत में जाओ, भारत ही विश्व को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाएगा। और आपने जो 14 साल तपस्या की है, अब उस तपस्या का प्रदर्शन करो, निखार करो, उसको औरों तक पहुंचाओ। बस फिर तो माउंट आबू में आना हुआ हिंदुस्तान, कराची से, कराची बहुत दूर नहीं है आबू, माउंट आबू से, आबू से कराची ज़्यादा दूर नहीं है। आप माउंट आबू कल जाएंगे तो पीस पार्क जाएंगे, वहाँ बाएं तरफ आप देखेंगे पहाड़ ही पहाड़ है और रणभूमि है चारों तरफ जैसे, तो उन पहाड़ों के पीछे ही कराची, ये कराची है, पाकिस्तान यहाँ से दूर नहीं है, ये पश्चिम बॉर्डर है हिंद भारत का। तो जब परमात्मा का ये आदेश मिला कि भारत जाओ, तो ये आबू पर्वत चुना गया, क्योंकि ये भी आदेश मिला कि कराची जो सागर के किनारे पर है, वहाँ से अब पहाड़ पर जाओ, क्योंकि अंत के समय जब विनाश होगा चारों ओर, तब इसी पहाड़ से या इसी भूमि से आपको विश्व को शांति का दान देना है, क्योंकि बहुत हाहाकार होना है दुनिया में। तो 1950 में बाबा अपने पूरे परिवार को लेकर, जो 400 भाई बहने थे, उनका अपना लौकिक परिवार भी था साथ में, सब ने तपस्या की कराची में और एक नई शक्ति प्राप्त की। और वो सब कैसे कराची से आबू में आए, अब आबू जो स्थान है उसके बारे में थोड़ा आपको मैं सुनाना चाहूंगी कि ये आबू राजाओं का स्थान है। जब राजाएं महाराजाएं चारों ओर थे, सौराष्ट्र स्टेट कहलाता था ये, तो राजस्थान और गुजरात या सौराष्ट्र के इर्द गिर्द ये सारा एरिया था। तो उन सब राजाओं के, क्योंकि एक एक डिस्ट्रिक्ट में राजा का महल है, राजाएं हैं। आप जाएंगे राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, सिरोही, अलवर, कोटा, ये जितने भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में राजाएं रहते थे, अपनी अपनी राजाई चलाते थे, उनके रियासतें थी। और सौराष्ट्र में भी बहुत राजाएं थे, और इन सब के महल है यहाँ माउंट आबू में। गर्मी के दिनों में ये राजाएं यहाँ आकर के रहते थे 3 महीना, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि बाकी तो गर्मी होती थी। तो माउंट आबू ठंडक वाला स्थान, बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी नहीं है, करीब 4000 फीट ही ऊंचा है, ज़्यादा तो नहीं, जो सबसे ऊंची चोटी है वो 6000 फीट है। तो आबू 4000 फीट पर है जो शहर है, तो इस स्थान पर आना हुआ। लेकिन अब उस समय भारत जब स्वतंत्र बना तो कैसे जितने भी राजाएं थे उनके आगे ये लिमिट आ गई कि इतनी जमीन रखनी है, इतने मकान रखने, इससे ज्यादा नहीं। तो वहाँ माउंट में जो महल है हर एक राजा के, वो उन्होंने महल बेच दिए, होटल बन गए, स्कूल बन गए हैं वो सारे महल। माउंट आबू जाएंगे आप, या तो होटल है वो या तो स्कूल है। तो राजाओं की राजाई तो खत्म हो गई, क्योंकि प्रजातंत्र आ गया भारत के अंदर। अंग्रेज भी चले गए लेकिन राजाई भी चली गई। और फिर जब माउंट आबू में केवल ये 3-4 महीने ही लोग होते थे, बाकी तो बारिश के दिनों में तो बहुत बारिश पड़ती थी, बहुत बारिश, ठंडी के दिनों में बहुत ठंडी होती थी। तो जब यहाँ आबू में आए और रहने लगे तो बाबा को कहा, बाबा ये कहाँ ले आए हो आप? शिव परमात्मा को कहते थे, बाबा कहाँ पहुँचे हम, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पथरीला स्थान है, रेगिस्तान है चारों तरफ, केवल आबू में थोड़ी बारिश ज़्यादा है और जगह की भेंट में तो भी कितना छोटा सा स्थान है। और तो बाबा शिव परमात्मा कहते थे, बच्चे घबराओ नहीं, डरो नहीं, धीरज रखो, एक दिन ऐसा आएगा जो सारी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, आएंगे एक दिन, और यहाँ से आध्यात्मिकता की अंजलि लेकर जाएंगे, अपनी आध्यात्मिकता की प्यास बुझाने आएंगे। माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी? बाबा इतना सुनाते थे भविष्य की बातें, शिव परमात्मा पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जो समझ में नहीं आता था ये कैसे संभव होगा, क्योंकि बाकी तो ये सारी जो भी बस्ती है ये सब आदिवासियों की बस्ती है, यहाँ पर कोई शहर नज़दीक नहीं है, सब गाँव ही गाँव हैं और आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ। अर्बुदा देवी उनकी देवी है, जो आबू जिसके नाम से आया है अर्बुदा चल, और आबू शब्द वहीं से लिया है, पर आबू अब्बा का घर, पिता का घर, ये भी प्रसिद्ध है। वहाँ 1000 साल पुराना जैन मंदिर है, इतना सुंदर वो मंदिर है जिसकी कारीगरी मार्बल पर की गई है। 1000 साल पहले कहाँ से वो मार्बल लाया होगा, उस समय ये रोड भी नहीं था जो अभी है, वो अंग्रेजों ने बनाया रोड, पर 1000 साल पहले राजाओं महाराजाओं ने वो महल बनाया, उनके वजीरों ने, और हाथी घोड़ों पर मार्बल संगमरमर लेकर के आए, और इतनी सुंदर मीनाकारी, इतनी सुंदर वो कारीगरी है उस पर, जो देखते ही आँखों को शीतलता आती है, और सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ मार्बल में उनका कार्विंग है। और जैन मंदिर है इसीलिए चारों तरफ जो जैन दिगंबर उनकी मूर्तियाँ हैं, पर आदिनाथ की मूर्ति है, उसी में ही जगदम्बा की भी मूर्ति है, वो भी है उसके अंदर। तो बाबा कई बार कहते, बच्चे ये तुम्हारा ही यादगार है, नीचे तपस्या कर रहे हो और ऊपर स्वर्ग के दृश्य दिखाए सीलिंग में। तो यहाँ ही फिर आना हुआ वापस, और फिर जब 1950 में यहाँ आए तो अब कहाँ जाएं, फिर इसके बाद क्या आगे हो, तो कई रिश्तेदारों ने निमंत्रण दिया, जिन्होंने अपना जीवन इसमें समर्पित किया, तो उनके रिश्तेदारों ने कि आप हमारे पास आकर के जो आपने 14 साल इतनी तपस्या की है वो ज्ञान हमको दो। तो बाबा ने, पिताश्री ने, ब्रह्मा बाबा ने एक एक करके बहनों को भेजा भारत के चारों कोनों में। सबसे पहले दिल्ली गए, जमुना किनारे जाके ज्ञान देते थे हमारी बहनें, और जैसे ये ज्ञान दूसरों को सुनाने लगी तो लोग तो आकर्षित होने लगे, और आकर्षित होकर के सत्संग सुनने लगे। और इतना ही नहीं, जैसे हमारी बहनें फिर ओम की ध्वनि करती थी तो जो उस सत्संग में बैठते थे सबको साक्षात्कार होने लगे। अब वही हिस्ट्री रिपीट होने लगी, लेकिन अंतर ये था कि जो बहनें ओम की ध्वनि करती थी उनसे देवी के साक्षात्कार होते थे, जगदम्बा, दुर्गा, सरस्वती, ऐसे साक्षात्कार लोग करते थे सुनते सुनते। तो इतना आकर्षण बढ़ गया कि ये तो देवियां आई है, देवियां आई है। और जगह जगह भाषण करने के निमंत्रण मिलते गए। इसी प्रकार चारों ओर सेवा केंद्र खुलते गए। जो आज हम देख रहे हैं भारत में कम से कम 8,000 सेवा केंद्र होंगे और कम से कम 8-9 लाख भाई बहने नियमित रूप से यह ईश्वरीय ज्ञान और योग का श्रवण, अध्ययन, अभ्यास करते हैं। और पिता श्री ब्रह्मा बाबा तपस्या करते रहे। बाबा भी जाते थे, मम्मा भी जाते थे। 1965 में मम्मा ने अपना देह त्याग किया माउंट आबू में ही। बहुत तपस्या की उन्होंने। और 1969 में, 69 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपना देह त्याग किया। बाबा का कमरा है माउंट आबू, आप जाएंगे जहाँ पर अपने कमरे में बाबा बैठे थे। और दादी प्रकाशमणि वो बॉम्बे में रहती थी, लेकिन 2-4 दिन पहले ही वो माउंट आबू आई थी और दादी जी उनके सामने खड़े हैं और बाबा बिल्कुल देह से न्यारे हो रहे हैं। दादी जी ने बाबा के हाथ पकड़े, बाबा ने दृष्टि दी, आंखें खोली और दृष्टि और हाथ ये दोनों रूप से जैसे सारी शक्ति बाबा ने दादी को विल कर दी और उसी समय आत्मा उड़ गई वतन में। तो जैसे दादी जी के हाथ में सारे विल पावर दे दी। और उसके पहले बाबा ने एक क्लास भी कराई, वहाँ हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन में, वहाँ बाबा ने क्लास भी कराई 1 घंटे तक, रात का समय 8:30 बजे पूरा किया। और बाबा उठे और दरवाजे तक आए, दरवाजे तक पहुँच कर बाबा सबके आगे झुके और झुक करके 3 शब्द उच्चारण किए जो बाबा के अंतिम शब्द थे। बाबा ने कहा, बच्चे सदा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी रहना। निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी रहना। और बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों से छुट्टी। बाबा जानते थे पहले से ही जैसे बस सभी ये अंतिम घड़ी है। सवेरे भी बाबा ने दादी जी को सारा आश्रम दिखाया, एक एक जगह बताई, सब पत्रों के जवाब दिए, जैसे सारा कारोबार अपना समाप्त करके बस जाना है, पूरा जैसे हिसाब किताब पूरा किया। और रात के समय बाबा अपने कमरे में बैठे थे, दादी जी उनके सामने और आत्मा उड़ गई। अब उसके बाद दादी जी को समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है, कुछ और बताया तो नहीं, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी संस्था, इतना इतने सेवा केंद्र। तो हमारी एक अन्य दादी है, दादी हृदय मोहिनी जी, जिनको गुलजार दादी कहते हैं, वो बहुत ध्यान में जाती है। वो भी 9 साल की थी जब अपनी माँ के साथ बाबा के सामने आई और बाबा के सामने आते ही वो साक्षात्कार करने लगी, कृष्ण का दर्शन किया, वैकुंठ सतयुग देखा। तो वो शुरू से ही बहुत ध्यान में जाती है। अभी भी दिल्ली में रहती है अधिकतर, पर यहाँ भी रहते, अभी 2-4 दिन पहले ही दादी वापस दिल्ली गए और अभी 30 तारीख को दादी हृदय मोहिनी जी दिल्ली से कई देशों में जा रही है। जैसे यहाँ से वो जाएंगी दादी फ्रांस जाएंगी, इटली जाएंगी, इज़राइल जाएंगी, ग्रीस जाएंगी और टर्की, ये ईस्ट के कंट्रीज हैं, वहाँ दादी जी का जाना होगा। तो दादी हृदय मोहिनी जी बहुत ध्यान में जाती थी। और वो बाबा को अव्यक्त रूप में देखती थी, सूक्ष्म वतन में। कैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म होते जा रहे हैं, सूक्ष्म होते जा रहे हैं, अव्यक्त होते जा रहे हैं, फरिश्ता बनते जा रहे हैं, और बाबा का फरिश्ता स्वरूप वो अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन में देखती थी। और वो फरिश्ता स्वरूप तारी को कहता था कि ये ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बनने के बाद, संपूर्ण बनने के बाद ये बनेगा जो फरिश्ता स्वरूप देखती थी। और बाबा उसी पुरुषार्थ में रहते थे कि मैं कैसे संपूर्ण फरिश्ता बनूं। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी ध्यान में गई, बाबा से पूछा, वो तो रूप देखती थी वतन में, सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार तो बाबा का करती थी। तो बाबा से जब पूछा कि बाबा आप चले कैसे गए, तो बाबा ने कहा बाबा चले नहीं गए, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है, वस्त्र बदली किए और एक और साकारी लोक त्याग कर आकारी लोक के वासी बने, और ये साकारी शरीर त्याग कर सूक्ष्म आकारी शरीर धारण किया है, पर बाबा चले नहीं गए और बाबा बच्चों से मिलने आएंगे। तो बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान देते थे, और जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो फिर 18 जनवरी 1969 को रात्रि 8:45-9 बजे के अंदर अव्यक्त हुए। उन बाबा के पार्थिव देह को हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन में, जो हमारा सबसे पुराना कॉम्प्लेक्स है, वहीं बाबा रहते थे। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा के पार्थिव देह को रखा और हजारों भाई बहने 2-3 दिनों में आए, और 21 जनवरी को दोपहर के समय आश्रम के अंदर ही पांडव भवन में उनका उनके देह का अंतिम संस्कार किया, जिनके याद में फिर अभी एक स्मारिका है, शांति स्तंभ, जो ब्रह्मा बाबा की याद में पांडव भवन के अंदर ही है, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आप कल जाएंगे जब पांडव भवन तो सब देखेंगे। और फिर जब नहा धो के सभी लग बैठे भोग लगाने, तो उस समय दादी गुलजार वतन में गई, और वो तो ध्यान में ही थी, और उसके बाद शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा सूक्ष्म आकार में जैसे दादी के तन में प्रविष्ट हुए और वाणी चलाई, जिस वाणी में बाप दादा, हम कहते हैं शिव बाप और ब्रह्मा दादा, माना बड़ा भाई, बंगाली में और सिंधियों में बड़े भाई को दादा कहते हैं, दादा कई भाषाओं में कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को दादा कहते थे, बड़ा भाई, और परमात्मा तो बाप है, पिता है। तो बाप दादा की पद्रामणी गुलजार दादी के तन में हुई, और बाबा ने जो वाणी चलाई वो वाणी भविष्य के लिए हमारे लिए रास्ता दे दिया कि कैसे ये संस्था आगे चलेगी। और उसके बाद बाप दादा लगातार आते रहे गुलजार दादी के तन में, जो आज तक 40 साल हो गए, 21 जनवरी 1969 बाबा प्रथम बार गुलजार दादी के तन में आए, और आज तक 40 साल हो गए हैं, लगातार ये कार्यक्रम चलते रहते हैं, और हजारों भाई बहने देश विदेश के यहाँ आते रहते हैं। ये जो हॉल है इसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं, कुर्सियाँ हटा दें तो 20,000 बैठ सकते हैं, और कभी कभी तो 25-30,000 भी हो जाते हैं, जो इस हॉल में भी समा नहीं पाते हैं। तो भाई बहने आते हैं सब तरफ से, और शिव परमात्मा और पिताश्री ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप, उनका आदेश, उनका उपदेश गुलजार दादी जी के द्वारा सुनते हैं इसी स्थान से। और आप सोच सकते हैं क्या हम भी आ सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने से लेकर मार्च महीने तक ये 6 महीना ये कार्यक्रम चलता है, और जो भाई बहने आते हैं वो यहाँ तो सुनते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई है कि यहाँ का सारा जो कुछ भी बाप दादा के द्वारा महावाक्य मिलते हैं वो अपने सेवा केंद्रों पर भी सुनते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आजकल ये बहुत सुंदर सुविधा हुई है। पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने सुना है, देखा है, हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत अच्छा। परंतु अवश्य ये आपकी इच्छा होगी कि हम भी साक्षात आकर के देखें, ये तो इच्छा है कि नहीं है, है ना? तो हम कहते हैं हाँ क्यों नहीं आ सकते हो, लेकिन फिर हमारे यहाँ कुछ नियम हैं। अभी तो आप योग शिविर में आए हो, फिर यहाँ से आप वापस जाएंगे तो ज्ञान शिविर करेंगे, लेकिन फिर रेगुलर आप क्लासेस में जाना, कम से कम एक साल की नियमित हाजिरी चाहिए, और फिर सारे और भी नियम जैसे अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, ये भी बहुत ज़रूरी है, मन वचन कर्म की शुद्धि, ये सारी बातें भी आवश्यक है। तो ये और भी समझ में आएगा और आप बाप दादा से मिलन मना सकेंगे, वो महावाक्य डायरेक्ट सुन सकेंगे, वरदान प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए इतनी बुद्धि स्वच्छ बन जाए, तो इसलिए सब नियमों का भी आपको पालन करना होगा, तब आप दोबारा क्यों नहीं आ सकते हो, क्योंकि अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू होता है और बाबा ने तो अभी तक कह दिया 40 सालों से तो आ रहे हैं। अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, क्योंकि पहले हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, अभी व्यक्तिगत मिलन समाप्त हुआ, क्योंकि हजारों भाई बहने होते हैं, एक एक से कहाँ तक मिलते रहेंगे। तो बाबा ने कहा लेट का बोर्ड लग गया, लेट हो पर टू लेट अभी तक भी नहीं है, एकदम देर नहीं हुआ है, क्योंकि जब विनाश का समय आएगा फिर तो ये रूप भी नहीं अनुभव कर सकेंगे, ऐसे शांति से बैठ करके सुनने का भी मौका नहीं मिल सकेगा उस समय। तो इसीलिए अभी फिर भी समय है अपने आप को बदलने का, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, पावन बनाने का, परमात्मा से योग लगाने का, क्योंकि अब परमात्मा का आदेश है कि अब वापस भी चलना है। आपको बताया दिन में कि कैसे ये चक्र समाप्त हो रहा है, तो घर कैसे लौटेंगे, फिर घर लौटकर फिर सतयुगी दुनिया में आना है, ये भी बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। तो इसीलिए शिव परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, और जब तक सतयुगी दुनिया स्थापन नहीं हो जाती तब तक परमात्मा हमारा श्रृंगार करते रहेंगे, शुद्ध बनाते रहेंगे, पावन बनाते रहेंगे। और ये शिव बाबा ने हमें सचेत किया है कि बच्चे तुमको वापस लेकर ही जाना है, तो सभी तैयार हो ना? जो तैयार है हाथ उठाएं। हाँ, सभी तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो, पक्का? अभी अगर आदेश मिले चलो तो तैयार हो? मोह ममता तो नहीं खींचेगी? हाँ, मेरा मेरा तो नहीं खींचेगा? नहीं खींचेगा, कुछ भी नहीं, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा तो नहीं करेंगे? बहुत अच्छा। तो बाबा कहते एवर रेडी रहो, तो रेडी नहीं, एवर रेडी, जब बुलावा आवे, जब जाने का आदेश मिले, हम आत्मा तैयार है, पर उसके लिए ये शरीर रूपी जो वस्त्र है ना, उसे ढीले हो जाओ, आत्मिक स्थिति में रहो, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ो, तो देखो ये जीवन आपका सफल हुआ ही पड़ा है, और भविष्य जन्म जन्म भी सफल अवश्य होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, समझ गए सब? हाँ, अब और आगे फिर आज शाम को आपको सुनाएंगे। अब हम यहीं समाप्त करते हैं, 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।